नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के लूणकरणसर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश। इसमें श्रमिकों के लिए साल भर में 125 दिन के रोजगार का प्रावधान। और पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा ग्लोबल समिट कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला, और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया। ड्राफ्ट रोल में कुल 5,46,00,000 मतदाताओं में से करीब 41,85,000 नाम अलग किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्य 4 कारणों से मतदाताओं के नाम अलग किए गए हैं। इनमें डुप्लीकेट एंट्री, घर पर नहीं पाए जाने जैसे कारण प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम अलग किए गए हैं उन्हें CEO और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर डाला गया है। मतदाता अब अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
अभी एक महीने की अवधि और है जिसमें आप दावे और आपत्तियां अपने लॉन्च कर सकते हैं। जो कंसर्न्ड ERO है या AERO है उसके यहां पे दावे आपत्तियां लॉन्च की जा सकती हैं। केस बाय केस बेसिस पे उनका मेरिट पे निस्तारण होगा 7 फरवरी 2026 तक। और जो अंतिम सूची है, जो मतदाता सूची है, उसका प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर जिले के लूणकरणसर में 107 करोड़ रुपए की लागत की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। लूणकरणसर में इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उनका मुख्य लक्ष्य प्रदेशवासियों का जीवन सरल सुगम बनाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना रहा है। श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि बीते 2 सालों में सुशासन और गरीब कल्याण के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि सुशासन, जन कल्याण और एक विकसित तथा समृद्ध राजस्थान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने जनता को वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पेश करने का जो वादा किया था वो उसे जनता के सेवक के रूप में पूरी ईमानदारी से निभा रही है।
राजस्थान की सरकार प्रशासन को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके द्वार लाया जा रहा है। आपसे आग्रह इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं, कोई भी समस्या हो उसको समाधान कराने का काम करें। लगातार हमारे इन सेवा शिविरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार आपने देखा जनता को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सेवा संकल्प की कड़ी में आज बीकानेर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। आपके बीकानेर के अंदर है, आपके जिले में 572 करोड़ रुपए की अधिक राशि के नए विकास कार्य हो रहे हैं।
राज्य सरकार की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन और सूचना विभाग की ओर से नगर निगम टाउन हॉल में 3 दिन की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु सहित अन्य अतिथियों ने इसका उद्घाटन किया। डीग जिले में भी प्रदर्शनी आयोजित की गई जहां जिला विकास पुस्तिका का विमोचन हुआ। बारा में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए विधायक ललित मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर आज इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा पहुंचे। ये वर्ष 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा है। श्री मोदी अपने समकक्ष डॉ अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे और इथियोपियाई संसद को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने अम्मान में आयोजित भारत जॉर्डन व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। शाह अब्दुल्ला ने व्यापार मंच को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी और संयुक्त निवेश पर चर्चा करने का अवसर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध अलग प्रकृति के हैं, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
मैं यहाँ आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस की दुनिया में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIRNews और फेसबुक AIRNews Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा ग्लोबल समिट कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिन के इस समिट का आयोजन WHO और आयुष मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। इस साल की थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। आयुष मंत्रालय इस समिट के मुख्य आकर्षण के तौर पर आयुष एक्सपो का आयोजन भी करेगा। इस एक्सपो में भारत की आयुष प्रणालियां आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोबा रिग्पा और होम्योपैथी को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में औषधीय पौधों और मसालों पर एक विशेष पैवेलियन होगा, जिसमें लगभग 40 दुर्लभ औषधीय पौधे और बीज प्रदर्शित किए जाएंगे। एक्सपो में एक WHO जोन भी होगा, जो विभिन्न देशों की पारंपरिक उपचार प्रणालियों को दिखाएगा। इस दौरान WHO द्वारा एक ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा लाइब्रेरी भी लॉन्च की जाएगी। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को एक मंच पर लाना है। अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को आज से बड़ी राहत मिली है। अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी के पास ही सर्जरी और मेडिसिन यूनिट की OPD सेवाएं शुरू कर दी हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब OPD सेवाएं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित रहेंगी।
OPD इमरजेंसी में होगी, वहाँ पर एक अलग 2 क्यूबिकल है, मेडिसिन का 1 क्यूबिकल है, 1 सर्जरी का, और जो रूटीन टाइम के बाद में जो रूटीन OPD है वो बंद हो जाएगी। जिस किसी को भी आपको विशेष इमरजेंसी में अगर दिखाना चाहे मेडिसिन सर्जरी वालों को, उनके लिए हमने विशेषता रखी है। हमारा ये जो पर्पज है, तो सरकार भी यही चाहती है कि जो गंभीर मरीज है वो सीधे अंदर वार्ड के अंदर जाए, और जो कम गंभीर है मरीज है जिनको दिखाना है, परामर्श लेना है, वो यहाँ पर क्यूबिकल में बैठे।
राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की। राज्य में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर वीर सैनिकों को याद किया गया। भरतपुर के किला स्थित शहीद स्मारक पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। बाड़मेर में शहीद चौराहे पर हुए विशेष कार्यक्रम में गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आज जयपुर में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीणा ने इस मिशन को पशुपालकों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया बताया। कार्यशाला का उद्देश्य मिशन से जुड़ी सही जानकारी अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाना है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक के निदेशक डॉ. अरुण तोमर ने कहा कि पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल और सही रखरखाव आवश्यक है। उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा के साथ साथ पशुधन के संपूर्ण विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। दो दिन की इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से 150 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर तेज गति से जा रही एक कार सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। कार की गति इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका इंजन उछलकर सड़क से दूर जा गिरा। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में एसआईआर के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के लूणकरणसर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश। इसमें श्रमिकों के लिए साल भर में 125 दिन के रोजगार का प्रावधान। और पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा ग्लोबल समिट कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।